एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं पानी की, H2O, है ना? कितनी आम सी चीज, हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर।
बिल्कुल, लगता है जैसे इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, पर क्या यह सच है? आज हम यही देखने वाले हैं कि ये साधारण सपानी असल में कितना असाधारण है, और इसके लिए हम सहारा ले रहे हैं भौतिक विज्ञानी जॉन फिनी की किताब वाटर, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन का।
हाँ, फिनी हमें दिखाते हैं कि पानी सिर्फ H2O नहीं है, ये एक पहेली है, एक अजूबा है। और आज के समय में जब हम क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो पानी को समझना मतलब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस इंसान के बारे में थोड़ी बात करते हैं जिसने पानी को इतने करीब से देखा है, जॉन एल फिनी।
हाँ, जॉन फिनी, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। पर इससे ज्यादा जरूरी है कि वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करते।
मतलब
उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लैब में बिताया है, तरल पदार्थों पर और खासकर पानी पर रिसर्च करते हुए। वो पानी की आणविक बनावट को समझने वाली दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स में से हैं।
अच्छा, तो वो खुद एक रिसर्चर हैं।
ये बात तो उनके नजरिए को काफी अलग बनाती होगी।
बिल्कुल, उन्होंने न्यूट्रॉन स्कैटरिंग जैसी बहुत एडवांस टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं ये देखने के लिए कि पानी के अणु असल में अंदर कैसे जुड़े होते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि पानी क्या करता है, वो ये समझाते हैं कि क्यों करता है।
और वो मुश्किल विज्ञान को आसान बनाते हैं ना।
हाँ, यही उनकी खासियत है। वो सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं करते, वो पानी को पर्यावरण से, समाज से, इतिहास से भी जोड़ते हैं, एक पूरा बड़ा नजरिया देते हैं। तो फिर आते हैं उनके इस किताब पर, वाटर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसका मतलब मेन आइडिया क्या है, क्या कहना चाहते हैं फिनी?
किताब की सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात ये है, पानी जो हमें सबसे आम लगता है वही विज्ञान की नजर में सबसे अजीब है।
अजीब कैसे?
फिनी इसे कहते हैं परिचितता का अंधापन, फेमिलियरिटी ब्लाइंडनेस। हम पानी को इतना रोज देखते हैं कि उसकी असाधारण बातों पर ध्यान ही नहीं देते।
अच्छा, जैसे?
जैसे बर्फ का पानी पर तैरना या पानी का इतनी सारी चीजों को अपने अंदर घोल लेना, ये सब हमें नॉर्मल लगता है।
हाँ बिल्कुल,
पर फिनी कहते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, ये पानी के अनोखे गुण हैं जो उसकी खास मॉलिक्यूलर बनावट और एक स्पेशल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हैं, और इन्हीं गुणों पर जीवन टिका है।
तो किताब हमें एक अकेले H2O मॉलिक्यूल से शुरू करके ये दिखाती है कि कैसे ये अरबों खरबों अणु मिलके वो दुनिया बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं।
एकदम, किताब पूछती है पानी दूसरे तरल पदार्थों से इतना अलग क्यों है और कैसे इसका ये अलग होना ही जीवन के लिए वरदान बन गया।
चलिए तो फिर इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं, अणुओं की दुनिया में झांकते हैं। H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, स्कूल में पढ़ा था, इसमें क्या खास है?
खास है इसका आकार, ये सीधा नहीं है, अणु मुड़ा हुआ है, वी शेप का, ऑक्सीजन बीच में और हाइड्रोजन के दो हाथ जैसे फैले हुए, करीब 104.5 डिग्री का एंगल है।
अच्छा, ये वी शेप क्यों जरूरी है?
इसी शेप की वजह से अणु पोलर बन जाता है, मतलब एक सिरा थोड़ा नेगेटिव ऑक्सीजन वाला और दूसरा सिरा थोड़ा पॉजिटिव हाइड्रोजन वाला।
एक छोटे से चुंबक जैसा?
हाँ बिल्कुल, एक नन्ना सा मैग्नेट। और यहीं से एंट्री होती है उस सुपरस्टार की जिसका जिक्र आपने किया, हाइड्रोजन बॉन्ड।
हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या बला है?
ये पानी के रहस्यों की चाबी है। जब बहुत सारे पानी के अणु पास आते हैं तो एक का पॉजिटिव हाइड्रोजन सिरा दूसरे के नेगेटिव ऑक्सीजन सिरे की तरफ खिंचता है। यही खिंचाव, यही आकर्षण हाइड्रोजन बॉन्ड है।
ये बहुत मजबूत होता होगा।
नहीं, यही तो मजा है, ये सामान्य केमिकल बॉन्ड से काफी कमजोर होता है, लेकिन हर पानी का अणु कई सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। फिलिन इसे पानी का सुपर ग्लू कहते हैं, पर ये ऐसा ग्लू है जो लगातार टूटता और जुड़ता रहता है।
लगातार टूटता और जुड़ता, मतलब पानी के अंदर सब कुछ हिलता डुलता रहता है?
हिलता डुलता क्या, समझिए एक तूफान मचा रहता है। तरल पानी कोई शांत ताराब नहीं है, ये एक बेहद डायनामिक बदलता हुआ नेटवर्क है।
नेटवर्क?
हाँ, हर अणु कोशिश करता है कि अपने चार पड़ोसियों से हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, एक पिरामिड जैसी शेप में, लेकिन ये शेप बनती है और पिको सेकंड में बिगड़ जाती है।
पिको सेकंड, यानी सेकंड का खरबवां हिस्सा।
हाँ, कल्पना कीजिए,
तो पानी लगातार बदलने वाले टिमटिमाते हुए क्लस्टर्स का जाल है। थोड़ी सी बर्फ जैसी व्यवस्था है, पर वो इतनी तेजी से बदलती है कि पानी बह पाता है, चीजों को घोल पाता है। स्थिरता और बहाव का एक अजीब सा पर परफेक्ट बैलेंस है।
वाह, मतलब पानी का हर ग्लास अंदर से एक डांस पार्टी जैसा है।
बिल्कुल।
और इसी डांस से पानी के वो अनोखे गुण आते हैं जिनकी आप बात कर रही थी।
हाँ बिल्कुल, पानी की सबसे बड़ी खासियत शायद यही है कि ये नियम तोड़ता है और इन्हीं टूटे नियमों पर जिंदगी चलती है, जैसे बर्फ का तैरना।
हाँ ये तो है, ज्यादातर चीजें ठोस होने पर भारी हो जाती हैं, डूब जाती हैं।
सही, पर पानी नहीं। पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे भारी होता है, उससे और ठंडा करो तो जमने से ठीक पहले वो फैलने लगता है।
फैलने लगता है क्यों?
क्योंकि जमते वक्त हाइड्रोजन बॉन्ड अणुओं को एक खुली जालीदार क्रिस्टल संरचना में पैक कर देते हैं। ये संरचना तरल पानी से ज्यादा जगह घेरती है, इसलिए बर्फ हल्की हो जाती है, लगभग 9% हल्की, और इसीलिए तैरती है।
और ये कितना जरूरी है, अगर बर्फ डूबती तो झीलें समुद्र नीचे से जमते और सब खत्म हो जाता। तैरती बर्फ तो एक चादर की तरह बचाती है नीचे के जीवन को।
है ना कमान, ये पानी की पहली अनोखी बात हुई। दूसरी है इसकी हाई स्पेसिफिक हीट, मतलब पानी को गर्म करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है।
हाँ ये तो रोज का अनुभव है, पतीले में पानी देर से गर्म होता है।
वो इसलिए कि ज्यादातर गर्मी पहले उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में खर्च होती है, अणुओं की रफ्तार बढ़ाने में कम, और इसी गुण की वजह से समुद्र हमारी धरती का तापमान कंट्रोल करते हैं।
और हमारे शरीर का भी?
बिल्कुल, हमारा बॉडी टेम्परेचर काफी हद तक स्थिर रहता है, इसी वजह से पसीना आता है, उड़ता है और शरीर ठंडा हो जाता है। ये भी पानी की इसी खूबी का कमाल है।
कमाल है। और वो घोलने वाला गुण, यूनिवर्सल सॉल्वेंट?
हाँ वो भी, पानी की पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता की वजह से वो नमक चीनी जैसी हजारों चीजों को अपने अंदर घोल सकता है।
और इसीलिए खून में पोषक तत्व घुल पाते हैं, कोशिकाओं तक पहुंच पाते हैं।
बिल्कुल, पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट, वेस्ट का बाहर निकलना, शरीर की लगभग हर केमिकल रिएक्शन, सब पानी की इसी घोलने की ताकत पर निर्भर है।
तो ये सारे अजीब गुण, बर्फ का तैरना, गर्मी सोखना, चीजों को घोलना, ये सिर्फ अजीब नहीं है, ये जीवन के लिए एकदम जरूरी है। पानी सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये तो खुद कहानी का हीरो है।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, फिनी यही बात बार बार कहते हैं, पानी निष्क्रिय नहीं है, वो एक्टिव है, वो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है। प्रोटीन और डीएनए जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स पानी के साथ इंटरैक्शन की वजह से ही अपना सही आकार ले पाते हैं। पानी जीवन की मशीनरी को चलाता है, उसे शेप देता है।
ये तो हुई विज्ञान की बात, पर फिनी इसे बड़े पैमाने पर मतलब सभ्यता और समाज से भी जोड़ते हैं, है ना?
हाँ, उनके काम का वो पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जहां पानी है वहीं जीवन है, और जहां जीवन है वहीं सभ्यता है। सारी पुरानी सभ्यताएं नदियों के किनारे क्यों बसी? पानी के लिए ना?
हाँ, पीने के लिए, खेती के लिए, आने जाने के लिए।
बिल्कुल, पानी ने हमेशा से मानव इतिहास को दिशा दी है और आज भी दे रहा है।
आज कैसे? जल संकट की बात होती है।
हाँ, फिनी जैसे एक्सपर्ट समझाते हैं कि कई बार संकट पानी की कुल मात्रा का नहीं होता। दुनिया में पानी तो बहुत है, संकट होता है साफ इस्तेमाल लायक पानी का सही जगह सही समय पर न मिलना।
अच्छा, मतलब मैनेजमेंट की प्रॉब्लम।
काफी हद तक हाँ, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी, ये असली मुद्दे हैं, और ये सिर्फ तकनीकी नहीं, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे भी हैं।
तो अगर हम फिनी के काम से कुछ मुख्य बातें, कुछ टेक अवेज निकालना चाहें तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और जरूरी बात, जो चीज रोज दिखती है उसे ध्यान से देखो, उसमें छुपी असाधारण बातों को पहचानो। पानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, परिचितता के अंधेपन से बचो।
ठीक है, दूसरा?
हाइड्रोजन बॉन्ड, पानी के नाटक का असली सूत्रधार यही है। ये कमजोर सा बॉन्ड ही पानी को उसके सारे अनोखे गुण देता है, स्थिरता भी और बहाव भी।
तीसरा पॉइंट क्या होगा?
ये कि पानी का अजीब होना ही जीवन के लिए सही होना है। अगर पानी दूसरे तरल पदार्थों जैसा नॉर्मल होता तो शायद जीवन पनप ही नहीं पाता। जीवन पानी की इन्हीं विसंगतियों, इन्हीं अनोखी बातों का नतीजा है।
ये तो बहुत गहरी बात है। और चौथा?
चौथा ये कि सब कुछ जुड़ा है। एक छोटे से H2O मॉलिक्यूल का आकार और बर्ताव दुनिया की जलवायु, समुद्र, कोशिकाओं के अंदर की केमिस्ट्री और यहाँ तक कि हमारी पानी की समस्याओं को भी तय करता है। अणु से सभ्यता तक एक कनेक्शन है।
और पांचवा
ये कि पानी सिर्फ एक चीज, एक रिसोर्स नहीं है, ये एक एक्टिव प्लेयर है जीवन में, धरती के सिस्टम में। ये सिर्फ बहता नहीं, ये बनाता भी है, बदलता भी है।
फिदनी की किताबों में कुछ ऐसी लाइनें होंगी जो इन आइडियाज को पकड़ती हो?
हाँ, कई है। जैसे वो कहते हैं कि सरल रासायनिक सूत्र H2O शायद विज्ञान में सबसे भ्रामक है। मतलब असली कहानी H2O में नहीं, उसके नेटवर्क में है, उसके अणुओं के आपसी रिश्ते में है।
और हाइड्रोजन बॉन्ड पर
उसके बारे में कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हर चीज की कुंजी है। ये स्थिरता और प्रवाह के बीच का एक आदर्श संतुलन है। मतलब ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा ढीला, बिल्कुल परफेक्ट।
और जीवन वाला पॉइंट?
वो कहते हैं जीवन जैसा कि हम जानते हैं पानी की विसंगतियों के साथ केवल संगत नहीं है, ये सीधे तौर पर उनका उत्पाद है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना।
बिल्कुल, जल संकट पर भी कुछ कहा है?
हाँ, ये वाली बात बहुत अहम है। संकट यह नहीं है कि हमारे पास पानी खत्म हो रहा है, बल्कि यह है कि हमें उन जगहों और समय पर साफ सुलभ पानी नहीं मिल रहा जब लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये पूरी प्रॉब्लम को मैनेजमेंट और इक्विटी के नजरिए से देखने को कहता है।
हाँ, जैसे सिंगापुर ने कितना अच्छा वाटर मैनेजमेंट किया है, और केप टाउन कैसे डे जीरो के खगार पर पहुंच गया था।
बिल्कुल, ये मैनेजमेंट का ही फर्क दिखाता है। और आखिर में पानी के एक्टिव रोल पर वो कहते हैं, पानी सिर्फ जीवन का माध्यम नहीं है, या हर उस जैविक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है जो जीवन को संभव बनाती है।
ये सब सुनने के बाद तो पानी का ग्लास भी अलग नजर आने लगा है। इसका हमारी रोज की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? इस जानकारी का हम क्या करें?
सबसे पहले तो एक नया नजरिया अपनाएं। पानी को फॉर ग्रांटेड लेना बंद करें। हर बूंद में विज्ञान का एक चमत्कार देखें, बारिश, नदी, बर्फ सब में।
और सेहत के लिए पानी ज्यादा पियो, ये तो सुनते ही हैं।
हाँ, पर अब शायद हम ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि क्यों। हाइड्रेशन सिर्फ प्यास बुझाना नहीं है, ये शरीर की हर मशीनरी को ठीक से चलाने के लिए जरूरी है, टेम्परेचर कंट्रोल से लेकर पोषक तत्वों के ट्रांसपोर्ट तक।
पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज को समझने में भी मदद मिलेगी।
हाँ बिल्कुल, जब हम सुनते हैं कि समुद्र गर्म हो रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि पानी की गर्मी सोखने की क्षमता के कारण वो कितनी ऊर्जा जमा कर रहे हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं, तो हम उसके असर को सिर्फ पानी के लेवल बढ़ने तक ही नहीं, बल्कि धरती के तापमान संतुलन बिगड़ने के तौर पर भी देख सकते हैं।
और हम खुद क्या कर सकते हैं?
अपने वाटर फुटप्रिंट को समझ सकते हैं। मतलब हम जो खाते हैं, पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें कितना पानी लगा है। क्या हम कम पानी वाली चीजें चुन सकते हैं? घर में पानी बचाना तो है ही, पर ये सोच थोड़ी बड़ी है।
और समाज के लेवल पे
हम पानी के सही मैनेजमेंट, उसकी सफाई और सबके लिए उसकी उपलब्धता की बात कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। फिनी का काम हमें पानी का सम्मान करना सिखाता है।
सच कहूं तो मेरे लिए इस पूरी बातचीत में सबसे हैरान करने वाली बात पानी के अंदर वो अणुओं का लगातार डांस है, वो पिको सेकंड वाला मामला। ये सोचना कि जो चीज इतनी स्थिर दिखती है वो अंदर से इतनी गतिशील है, कमाल है।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प ये कनेक्शन है कि जीवन पानी के अजीब होने की वजह से ही है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने जानबूझकर नियमों को तोड़ा ताकि जीवन बन सके। ये विज्ञान के साथ साथ थोड़ा फिलोसफिकल भी लगता है।
तो कुल मिला के संदेश यही है, पानी साधारण होकर भी असाधारण है। इसकी वैज्ञानिक गड़बड़ियां ही असल में इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जीवन की गारंटी है। हमें शायद पानी को सिर्फ एक जरूरत की चीज की तरह नहीं, बल्कि एक जादुई साथी की तरह देखना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी के ये खास गुण इतने जरूरी हैं, तो जब हम ब्रह्मांड में कहीं और जीवन खोजते हैं, तो क्या हमें वहां भी ऐसा ही अजीब पानी खोजना चाहिए, या जीवन किसी और ही तरह के तरल पर भी पनप सकता है? सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक तरफ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।